हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र गौर निताय के चरणों में विचित्रायप्रे के भक्तों को आज शाम को भगवत हरि कथा में स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं यहाँ के भक्तों का, सुदामा प्रभु और सारे उनके साथियों का, जो चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन को श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के अनुसार जन कल्याण के लिए, मानवता के उद्धार के लिए शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। कलयुग में भगवान श्री जगन्नाथ दारू ब्रह्म के रूप में पति तपावन है। दारू कहते हैं लकड़ी को, तो जगन्नाथ जी का श्री विग्रह लकड़ी से बनाया जाता है और ब्रह्म दारू ब्रह्म के रूप में जगन्नाथ कलयुग में 10,000 साल तक कलयुग में 10,000 साल तक भगवान जगन्नाथ पति तपावन के रूप में कलयुग के लोगों का उद्धार करते रहेंगे। जिस संस्था के अंतर्गत आप सब लोग हरे कृष्ण कीर्तन को सुन रहे हैं, हरि कथा सुन रहे हैं, इस इस्कान संस्था में पहला श्री विग्रह जो पूजा गया वो जगन्नाथ जी का था। 67 में सैन फ्रांसिस्को में पहली बार भगवान जगन्नाथ अपने आप शिला प्रभुपाद के सामने प्रकट हुए। वैसे बचपन से शिला प्रभुपाद जी जगन्नाथ, 5 साल की आयु में जगन्नाथ की रथ यात्रा बच्चों के साथ मनाते थे। पिताजी ने जगन्नाथ जी का रथ उनको उपलब्ध करके दिया था और बच्चों के साथ उत्सव मनाते थे। और प्रभुपाद जी अपनी जीवनी में लिखते हैं कि मेरी इच्छा थी कि मैं कब जाके जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ का दर्शन करूंगा। और श्री चैतन्य महाप्रभु 24 साल के सन्यास के बाद 18 साल जगन्नाथपुरी में रहे। अधिक से अधिक समय चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे। वैसे वृंदावन माधुर्य धाम है, जहां भगवान श्री कृष्ण की प्रेम की माधुर्य लीला का क्षेत्र है। द्वारका भगवान का ऐश्वर्य लीला का क्षेत्र है, जहां भगवान ने द्वारकाधीश के रूप में, राजा के रूप में राज किया। मायापुर औदार्य धाम है, बड़े उधार हैं चेतना महाप्रभु पतितों के उधार के लिए। किसी को भी स्वीकार करते हैं, किसी के पाप को नहीं देखते हैं, ताप संताप को नहीं देखते हैं, जो भी नीचे गिरा है उस सबको स्वीकार करते हैं। पति तपावन औदार्य धाम है। जगन्नाथपुरी में तीनों धाम है, जहां भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है नीलाचल पर्वत पे, उसको कहते हैं द्वारका, वो ऐश्वर्य धाम है। जगन्नाथ जी को आज भी 56 भोग लगते हैं रोज के, और जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रसाद एक समय में 100,000 आदमी जाएं तो प्रसाद पका हुआ तैयार मिलेगा, इतने लोगों को भोजन मिल सकता है हर वक्त तैयार। जगन्नाथ मंदिर की ये विशेषता है, 100,000 पीपल के खाने जितना भोजन हर वक्त तैयार होता है, और भगवान जगन्नाथ को तो 56 भोग लगते ही रहते हैं। कभी भक्त कहते हैं भगवान को जब आराम करना होता है तो श्री रंगम में जाते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में आपको भगवान विष्णु सोए हुए मिलेंगे हमेशा, जहां जाएंगे वहां सोए हुए मिलेंगे। भगवान को जब आराम करना होता है तो श्री रंगम में जाते हैं, और भगवान को जब भोजन करना होता है तो जगन्नाथपुरी जाते हैं। सारा दिन जगन्नाथ के मंदिर में बड़े बड़े मिट्टी के मटके 20 किलो 10 किलो के सर के ऊपर उठा के पुजारी भोजन भोग ले जाएंगे, भोग चलता ही रहेगा सारा दिन। और भगवान को जब खेलना होता है तब वृंदावन में आते हैं, वहां भगवान कभी आपको बैठे हुए भी नहीं मिलेंगे, घूमते हुए मिलेंगे बैठे उनका तक। और भगवान को जब पैसा कमाना होता है तब तिरुपति में आते हैं, तिरुपति में सब लोग पैसा भगवान को देके जाते हैं। वहां भगवान को माना जाता है कि भगवान ने शादी के लिए कुबेर से उधार लिया है, कुबेर धन का देवता है, उसके कर्जा लिया भगवान ने पद्मावती से शादी करने के लिए, तो अभी तक कर्जा उतरा नहीं है, इसलिए सब यात्री उधर हुंडी में पैसा डालते हैं। दुनिया में सबसे शाहूकार मंदिर, सबसे धनी मंदिर तिरुपति का मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा धनी मंदिर है, जहां बेअंत सोना पैसा लोग फेंकते जाते हैं तिरुपति में, और अभी तक उधार कुबेर का उतरा नहीं है, अभी तक काम चल रहा है। और जगन्नाथपुरी में प्रसाद की कमी नहीं है, और श्रीरंगम दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, मंदिर जिसकी जिसका क्षेत्रफल जिसकी एराज जिसकी एरिया सबसे बड़ी है वो श्रीरंगम मंदिर है। और श्रीरंगम मंदिर के अंदर जो भगवान विष्णु की पूजा होती है वो श्री विग्रह कौशल्या मां के द्वारा अयोध्या में पूजा जाता था, और अयोध्या से श्री राम ने वो श्री विग्रह विभीषण को पूजा के लिए दिया, और विभीषण लंका जाते हुए इस स्थान पे श्री रंगम में उस श्री विग्रह को रखा, फिर वहां से विग्रह कभी गए नहीं। आज भी ये मान्यता है कि विभीषण प्रतिदिन वहां पूजा करने के लिए श्री रंगम आता है। तो ये प्राचीन सारे मंदिर हैं। तो जगन्नाथ प्रभुपाद जी 66 में इस्कान की स्थापना की, 65 में इंडिया से गए, 66 में न्यूयॉर्क में स्थापना की, और न्यूयॉर्क के बाद एक भक्त प्रभुपाद से पहले मिला और बहुत सहयोग किया, माइकल, जो बाद में मुकुंद गोस्वामी हुए, जिसकी प्रभुपाद ने पहले शादी कराई मुकुंद की जानकी से। ये पहला विवाह प्रभुपाद जी ने अमेरिका में अपने हाथों से किया, और मुकुंद उसके बाद कह रहा था कि मैं इंडिया जाऊंगा, मेरे को इंडिया जाना है, तो जानकी के साथ वहां से निकला। प्रभुपाद ने जाते समय कहा कि एक और आप हमारे लिए सेंटर अगर खोलें, और मुकुंद उस वक्त कहने लगा कि न्यूयॉर्क के बाद अच्छी जगह है जहां हम प्रचार कर सकते हैं वो सैन फ्रांसिस्को है, और मैं अभी इंडिया जा रहा हूं, ऐसे प्रभुपाद से विदा ले रहे थे। तो प्रभुपाद ने कहा कैन यू हेल्प मी टू ओपन वन सेंटर इन सैन फ्रांसिस्को। तो मुकुंद मन में था लेकिन इंडिया जाने की तैयारी करके टिकट लेके जा रहा था, तो रास्ते में उनका फ्रेंड था जिसका बाद में नाम श्याम सुंदर हुआ, और उसके साथ जो रहती थी लड़की जिसके साथ उनकी बाद में शादी हुई मालती, वो उस वक्त किसी फॉरेस्ट में काम कर रहे थे, तो उनके पास एक दो दिन रुके। उनको प्रभुपाद जी की महिमा बताई, प्रभुपाद जी भारत से आए हुए कैसे महान संत हैं जो लोगों को शुद्ध कृष्ण भक्ति का उपदेश दे रहे हैं। तो उन दोनों के मन में इच्छा हुई श्याम सुंदर और मालती के कि हम भी स्वामी को देखना चाहते हैं। तो मुकुंदा का मन, इंडिया में उस वक्त में कुछ झगड़ा चल रहा था, तो न्यूज़पेपर में देखा कि इंडिया में इस वक्त कुछ राइट्स हो रहे हैं, तो उन्होंने इंडिया जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और सैन फ्रांसिस्को आ गए, और फिर वहां श्याम सुंदर और मालती भी आ गए, और इन चारों ने प्रयास करके वहां एक सेंटर खोला, दूसरा मंदिर न्यूयॉर्क के बाद इस्कॉन का अमेरिका में, और प्रभुपाद जी को लिखा और टिकट भेजा एयर का कि आप सैन फ्रांसिस्को आइए, और प्रभुपाद पहली बार जीवन में हवाई जहाज में चढ़े न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को। जब वहां आए 50-60 हेपी भक्तों ने, कोई धोती वोती में नहीं, कोई तिलक विलक में नहीं था, ऐसे हेपी भक्तों ने बड़े उत्साह के साथ प्रभुपाद का स्वागत किया, प्रभुपाद के रहने की जगह रखी। एक दिन प्रभुपाद वहां बैठे हुए थे तो उनकी टेबल के ऊपर जगन्नाथ जी का इतना छोटा सा 3 इंच का मूर्ति 4 इंच का रखा गया, और सबको आश्चर्य हुआ। प्रभुपाद ने जगन्नाथ को प्रणाम किया, छोटी मूर्ति को बड़ा आश्चर्य से प्रणाम किया, तो पूछने लगे कौन है। बोला भगवान जगन्नाथ आए हैं, कौन लाया। मुकुंद ने कहा मालती लाई, बुलाओ मालती को। मालती को बुलाया, मालती ये आप लाई हो। तो बेचारी थोड़ी डर गई कि लाई तो मैं हूं, प्रभुपाद जी पूछेंगे कैसे लाई हो, तो वो तो कहने में मेरे को संकोच होगा, क्योंकि मैं तो एक इंडियन स्टोर में सामान बेचते वहां गई थी, मुझे ये अच्छा लगा और मैंने उसको उठा के मेरे बैग में डाल दिया, तो खरीद के नहीं लाई थी, और भगवान पैसों से खरीदे भी नहीं जाते हैं, वो प्रेम से उसने अपने झोले में डाल दिया था, वहां से उठा के आ गई थी। तो प्रभुपाद जी ने कहा हाँ तू आप लाई है। बोला हाँ प्रभुपाद जी मैं नहीं। बोले इसके साथ दो और होंगे। बोला हाँ हो थे। बोला लेके आओ। तो मालती फिर वापस उसी तरीके से उसी मार्ग से वैसे गई, वहां घूम के घूमते घूमते वो दोनों फिर बैग में उठा के लेके आए। तो प्रभुपाद ने देखा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ये तीनों अपने आप प्रकट हुए हैं। तो प्रभुपाद ने कहा आप में से कोई इसका बड़ा मूर्ति बना सकता है। तो श्याम सुंदर को लकड़ी का काम आता था, तो उसने कहा मैं बनाऊंगा प्रभुपाद जी, और जाके लकड़ी डोनेशन लाए और श्याम सुंदर मूर्ति बनाना शुरू किया, और प्रभुपाद जी उन मूर्तियों को बनने के लिए देखने उनके फ्लैग पे गए। ये पब्लिक में कहने की बात तो नहीं है, लेकिन प्रभुपाद की उदारता को देखने की, कितना प्रभुपाद में टॉलरेंस था, कितनी सहनशीलता थी। श्याम सुंदर अपने आप बताता है कि जगन्नाथ की जब मूर्ति बना रहा था तब तक वो सिगरेट पीता था, और सिगरेट का पैकेट जगन्नाथ के सर के ऊपर पड़ा था, और प्रभुपाद जी अंदर आए कुछ नहीं बोला, और जब बाद में उससे मिले बोला मूर्ति कब तैयार हो जाएगी, बोला जल्दी तैयार हो जाएगी। प्रभुपाद ने कहा तुम्हारे और कृष्ण के बीच में एक सिगरेट खड़ी है क्यों, वाई देयर इज ए वन सिगरेट बिटवीन यू एंड कृष्ण, कांट यू गिव इट अप, कैन यू रिड्यूस वन पर डे, एक रोज की कम करने का प्रयास करो।
प्रभुपाद ने ऐसे नहीं कहा, क्या करते हो ऐसे तो भगवान की मूर्ति बनाते हैं क्या, ऐसे नहीं बोला प्रभुपाद। कितनी उदारता थी उनमें। अभी भी हमारी जितनी मूर्तियां स्थापित होती हैं पूरी दुनिया में, श्री विग्रह ज्यादा से ज्यादा बनाने वाले मुसलमान हैं, जो जयपुर में कारीगर हैं मुसलमान है। सबसे ज्यादा जितनी ड्रेसेस बनती हैं उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी सब मुसलमान करते हैं, सब जगह पे। कैसे भी जाने अनजाने में भगवान की सेवा में वो भी लगे हुए हैं। तो प्रभुपाद ने बहुत बड़े उदाहरण का, आपको आश्चर्य लगेगा प्रभुपाद में कितना टॉलरेंस था, कितनी उनमें सहनशीलता थी। और उसको इतना प्रेम से कहा, न उसको घृणा की, न उनसे उनको कुछ कहा, लेकिन इतना प्रेम से उनको रखा कि वो इतने महान भक्त हो गए कि आगे चल के उन्होंने जहां सन्यासी असफल हो गए इंग्लैंड में, वहां उन्होंने ग्रस्तों ने बहुत बड़ा कृष्ण भावना का प्रचार करके इंग्लैंड में सेंटर स्थापित किया। तो बात हम ये कर रहे थे कि भगवान जगन्नाथ ऐसे पहले इस्कान के अंदर पूजित श्री विग्रह प्रकट हुए, और तब ड्रेस की भी नहीं थी, ऐसे के ऐसे फोटो कलर करके रख दिए गए थे। प्रभुपाद जब इंडिया आए वापस गए तब कुछ कपड़ा ले गए, तब पहली बार ड्रेसिंग बनाई, तब तक ड्रेस के बगैर ऐसे ही जगन्नाथ जी रखे हुए थे और उसकी पूजा करते थे भक्त। तो जगन्नाथ की पूजा में कोई अपराध नहीं है, बहुत आसान पूजा है, सरलता से की जा सकती है। तो इस्कान के पहले पूजित श्री विग्रह जो स्थापित हुए वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हुए। और उसी साल प्रभुपाद ने कहा ये तो बड़े दयालु हैं, लोग तो कलयुग में मंदिर में आते नहीं है, इसलिए ये बाहर जाके लोगों को दर्शन देते हैं, इनकी रथ यात्रा निकलती है। तो उन भक्तों ने कहा रथ यात्रा निकलती तो हम भी रथ यात्रा निकालेंगे। वो एक ट्रक लाए और पहली रथ यात्रा अमेरिका में जगन्नाथ की सेवन में सैन फ्रांसिस्को में निकली। तो ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और सुदर्शन चक्र, ये चार श्री विग्रह बड़े दयालु और अद्भुत हैं, पति का पावन है। एक भक्त ओडिशा में भगवान जगन्नाथ का था, वो रथ यात्रा में गया, भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया, नजदीक से दर्शन किया, बड़ा आनंद में विभोर हो गया, जगन्नाथ की आंखों में, आंखों के द्वारा हृदय में बस गया। जब घर गया अपने, तो पत्नी ने भोजन के समय जो थाली थी मिट्टी की, लाल लाल मिट्टी के बर्तन होते हैं, मिट्टी का बर्तन, लाल प्लेट थी, उसके अंदर चावल सफेद रखे, उसके ऊपर जो जो सब्जी थी हरी सब्जी जो पकने के बाद काली हो जाती है, वो चावल के ऊपर रख के उसको दी। तो वो खाए नहीं, नाचने लगा, आंखों से आंसू आए, नाचे रहे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। तो पत्नी परेशान हो गई कि ये पागल हो गया क्या, गया था रथ यात्रा देखने, वापस आया है, भोजन नहीं कर रहा है, नाच रहा है, पागल हो गया क्या। तो गांव के पंचों को बुलाया, कुछ लोग इकट्ठे हुए, बोला तुम क्यों नाच रहे हो, क्या बात है, भोजन क्यों नहीं कर रहे हो, पत्नी तुम्हारी परेशान है। बोला मैं कैसे भोजन करूं, मैं भोजन की थाली को देखता हूं, लाल सी थाली है, उसमें सफेद चावल है, उसके ऊपर काला काला सब्जी है, ये तो भगवान जगन्नाथ की आंख है, इसको मैं कैसे खाऊं। भगवान जगन्नाथ की आंख लाल, फिर सफेद और फिर काला। तो उसको उसको देख के जगन्नाथ जी की आंख नजर आई और खाए नहीं। उसकी पत्नी को उनने कहा आप इसको भोजन अलग चावल अलग सब्जी और दूसरे बर्तन में दो तब खाएगा, ये इसको जगन्नाथ की आंख दिख रही है कैसे खाएगा, ये नहीं खाएगा। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में 16-17 साल रहे, 18 तक भी कहते हैं, 11 साल वृंदावन में रहे और 11 साल के बाद मथुरा में रहे। तो कई ऐसे भाव में कहते हैं कि एक दिन देवकी माता ने भगवान श्री कृष्ण को नाश्ते में मक्खन दे दिया, तो श्री कृष्ण भोजन न करके दरवाजा बंद करके अंदर बैठकर किसी से मिल नहीं रहे थे, तो बड़े चिंता हुई सबको, ऐसे क्यों कर रहे। उद्धव को कहा कि श्री कृष्ण को आप पूछिए भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं, बंद क्यों बैठे हैं। तो उद्धव जब गया तो उद्धव को कहा कि मक्खन तो केवल ब्रज में मैंने खाया है, मैंने को मक्खन देखने से वृंदावन याद आता है, यशोदा माँ याद आती है, नंद बाबा याद आता है, गोप गोपियां मेरा सारा संग याद आता है, मैं माँ को बोलो कभी मेरे को माखन नहीं दे। भगवान ने ब्रज से बाहर न कभी बांसुरी हाथ में उठाई, न माखन खाया, न मोर पंख लगाया, ये तो केवल ब्रज की रीति थी। और उसी दिन वहां से कृष्ण उठ के हाथ पकड़ के अपने उद्धव का जमुना के किनारे बैठकर कहा, उद्धव अब तुम एक काम करो, तुम वृंदावन जाओ मेरा संदेश लेकर, नंद बाबा को यशोदा मैया को जाकर मेरा संदेश दो, वो मेरे प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैंने उनको वचन दिया था मैं आऊंगा, और फिर गोपियों को तुम संदेश दोगे तो वो नहीं समझेंगी, जो मैं तुमको लिख के देता हूँ ये सारे संदेश एक एक करके गोपियों को सुनाना। तो ये उद्धव संदेश के नाम से श्रीमद् भागवत में 2 अध्याय हैं, 46-47 अध्याय 10 स्कंद में। तो ऐसे जगन्नाथ भगवान के कई भक्तों की ऐसी अद्भुत लीला है। जगन्नाथपुरी का राजा दक्षिण भारत में गया, वहां के एक राजा की कन्या उसको पसंद आ गई, तो उससे विवाह करने के लिए तैयारी होने लगी। राजा वापस जगन्नाथपुरी में आए तो जो लड़की जिसका विवाह राजा से होना था, वहां का मंत्री जगन्नाथपुरी में राजा से मिलने आया विवाह की तारीख तय करने के लिए। उस वक्त जगन्नाथ रथ यात्रा होने का दिन था, तो जब जगन्नाथ रथ यात्रा होती है तो पुरी का जो राजा है वो जगन्नाथ जी के आगे झाड़ू लेके सफाई करता है, रोड साफ करता है, सोने का हाथे का झाड़ू पकड़ के। तो राजा को झाड़ू निकाल के देखते हुए मंत्री ने कहा, हमारे राज की कन्या जो स्वीपर जैसे काम करता है, इतनी पब्लिक लाखों के बीच में झाड़ू निकाल रहा है, उसको कैसे देंगे कन्या। मंत्री वहां से चला गया, राजा को बोल दिया कि हम कन्या नहीं देंगे, उसको अपनी कन्या नहीं देंगे। ये राजा ने कहा कि विवाह की तारीख तय करो, बोला हम नहीं देंगे, तुम तो झाड़ू निकालते हो। और दोनों के बीच में युद्ध हो गया, और युद्ध के अंदर दोनों ने कहा अगर दक्षिण भारत का राजा जीतेगा तो वो गणेश जी की पूजा करता था, बोला अगर मैं जीतूंगा तो तुम्हारे ये जगन्नाथ जी ले जाके मेरे वहां रखूंगा, गणेश को ऊपर रख दूंगा, जगन्नाथ जी तुम्हारे नीचे पूजा। जगन्नाथपुरी राजा ने कहा अगर मैंने जीत लिया तो गणेश जी को हम पीछे रख देंगे, जगन्नाथ जी की आगे पूजा करेंगे। ऐसे आपस में बातें हुई, और उस युद्ध में किसी कारण से पुरी के राजा के सेना में आग लग गई और वहां से हार के वापस आ गया। बड़ा दुखी होकर जगन्नाथ के मंदिर में जाके रोने लगा कि अब तो आपको ले जाएंगे वो, और मैं आपको नहीं छोड़ना चाहता। तो भगवान जगन्नाथ ने ऐसी कहा, स्वप्न में कहा, तुम चिंता मत करो, तुम दोबारा एक बार उधर युद्ध करने के लिए जाओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। अब इसने दोबारा युद्ध के लिए राजा शुरू हुआ जाने के लिए सेना पूरी लेकर, घोड़ों के ऊपर चढ़ के 2 नौजवान सांवला और गोरा उस रास्ते से आगे जा रहे हैं। एक माता जी छाछ बेचने जा रही है, बटर मिल्क, उसको कहा मां हम बहुत थक गए हैं, हमको छाछ पिलाओ। बोला हाँ बेटा छाछ पिलाओ, मैं छाछ तो बेचने जाती हूँ, यही हमारा रोज का गुजरान है। दोनों ने छाछ पी, भाइयों ने कहा पैसे दो, बोले पैसे तो नहीं है, हमारे राजा आ रहे हैं पीछे सीना से, ये अंगूठी देते हैं, ये अंगूठी आप मां हाथ में रखो, पीछे मेरा राजा आ रहा है, उसको ये अंगूठी देना, वो आपको हमारी छाछ के पैसे देंगे। ये तो दोनों आगे चले गए, पीछे राजा आ रहा था सेना के साथ, वो स्त्री खड़ी थी हाथ में और अंगूठी लेके, महाराज महाराज रुकिए, आपके दो सैनिक यहां से प्यासे थे, मेरी छाछ पी है, उनके पास पैसे नहीं थे, ये अंगूठी दी है, ये आप लीजिए, हमारे पैसे दीजिए। महाराज ने अंगूठी को देखा, बोला ये तो अंगूठी जगन्नाथ जी को हमने मंदिर में अर्पण की थी, ये तो राजकोष से दी हुई है, ये राजा हमारे घर से गई हुई है, तो यहां से ये अंगूठी आपके पास कैसे आई? बोला आपके दो सैनिक घोड़ों के ऊपर चढ़ के यहां से अभी गए हैं, हमसे छाछ पी के गए हैं। राजा को निश्चय हुआ कि भगवान जगन्नाथ स्वयं मेरा सैनिक बन के मेरी रक्षा के लिए गया है, और वहां तक पहुंची ये सेना, तब तक युद्ध हो रहा था और सामने राजा और उसके सैनिक कह रहे थे कि तुम्हारे दो कौन से सैनिक घोड़े के ऊपर हमारी सारी सेना को काट रहे हैं, मार रहे हैं, और उस राजा दक्षिण भारत का हार गया। आते हुए राजा ने रास्ते में उस राजा ने कहा ठीक है अब तुम हार गए हो, तुम्हारा गणेश लाओ। वो गणेश जी को वहां से लाया, अभी भी जगन्नाथपुरी में वो गणेश जी पीछे रखा हुआ है, और फिर कहा तुम्हारी लड़की जिससे मुझे शादी करनी थी, अब मैं नहीं शादी करूंगा ऐसे, जिससे किसको किसी स्वीपर से शादी कराऊंगा, ले चलो इसको, मंत्री को बोला तुम ले चलो, इसके लिए स्वीपर ढूंढो, उसी से इसकी शादी कराएंगे, इसके पिताजी ने कहा था ना कि मैं स्वीपर हूं, तो अब इसको स्वीपर से ही शादी कराएंगे। महाराज रास्ते में वापस आते हुए इस स्त्री जिसने छाछ पिलाई थी कृष्ण बलराम को, पूरा एक गांव उसको दे दिया कि तुम्हारा ये गांव है, तुम्हारे नाम से ये गांव होगा, तुमने भगवान की सेवा की है, तो आज भी उस स्त्री के नाम से वो गांव उस रास्ते पे है। अब वापस जब राजा आया तो मंत्री ने कहा कि ये राजकन्या है, राजा की पुत्री है, ये तो किसी राजा से शादी होनी चाहिए, किसी भंगी से शादी तो नहीं की जा सकती है। मंत्री बहुत बुद्धिमान था, कहा बेटी तुम यहां मेरे घर में रहो, उचित समय पे तुम्हारी शादी विवाह का प्रबंध करेंगे। जगन्नाथ रथ यात्रा आ गई दूसरे साल की, और महाराज जगन्नाथ के आगे झाड़ू निकालने के लिए तैयार होके गए, तब मंत्री ने कहा कि अब बेटी तुम दुल्हन की तरह सज जाओ, अब तुम्हारा विवाह आज होने वाला। बेचारी रोने लगी, बोला मेरा विवाह किसी भंगीज के साथ कैसे कराओगे, स्वीपर के साथ? बोला तुम चिंता मत करो, आज तुम्हारा विवाह होना है। और जब झाड़ू लेके राजा झाड़ू निकालने लगा, तब जाके मंत्री ने कहा महाराज ओ राजकन्या के लिए मैंने एक बहुत अच्छा सुंदर स्वीपर चुन लिया है, उससे शायद शादी कराएंगे। बोला ठीक है, रथ यात्रा के बाद कराएंगे। बोला नहीं अभी कराएंगे। बोला कौन है? बोला महाराज आप हैं, आप ही तो झाड़ू निकाल रहे हैं ना, तो इस वक्त तो आप ही अच्छे से अच्छे मुझे स्वीपर लगे हो। तो उस लड़की की शादी फिर उस जगन्नाथपुरी के राजा से हुई। तो एक कथा बताने से हमारा उद्देश्य और अभिप्राय यह है, ये जगन्नाथ बलराम अपने भक्तों की सहायता करने के लिए लड़ने के लिए भी जाते हैं सैनिक बनके, और कई इनकी अद्भुत लीलाएं जगन्नाथपुरी में आजकल भी घटित होती हैं। ये साक्षात कृष्ण बलराम हैं और योग माया सुभद्रा है, उनका सुदर्शन चक्र भक्तों की रक्षा करता है, इनकी प्रेम से भाव से पूजा करने से, इनका कीर्तन करने से, इन्हीं के सामने रोज जाके चेतन महाप्रभु जाके इनका दर्शन करके मूर्छित हो गए थे। पहले दिन जाते ही दर्शन किया और मूर्छित हो गए, साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन उनको बांसुरी बजाते हुए, यही जगन्नाथ उनको बांसुरी बजाते हुए दिखाई दी। तो चेतन महाप्रभु जगन्नाथपुरी में क्यों रहे, वृंदावन में क्यों नहीं रहे? जब वो कृष्ण का प्रचार कर रहे थे, राधा के भाव में आए थे, तो वृंदावन जाना चाहिए था, तो लोग जगन्नाथपुरी में क्यों रहे? चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण राधा के भाव में है, जो कृष्ण को मिलना चाहती है। कृष्ण राधा के भाव में, कृष्ण की सुंदरता, कृष्ण की मधुरता के का रस आस्वादन करना चाहता है चैतन्य महाप्रभु। और भगवान जगन्नाथ ये जो मूर्ति है, ये जो स्वरूप है श्री विग्रह है, ये श्री कृष्ण अपने भक्तों के और विशेष रूप से राधा के विरह में, उसकी सेपरेशन में ये रूप हुआ है। ये जो जगन्नाथ जी का रूप है, ये ब्रजवासियों की जुदाई के कारण, सेपरेशन के कारण, और विशेष रूप से राधा रानी और गोपियों से बिछड़ने के कारण श्री कृष्ण का ये रूप हुआ है। तो ये कृष्ण राधा की जुदाई में है, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण राधा के रूप में कृष्ण की जुदाई में है। तो जब चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ मिलते हैं तो ये राधा और कृष्ण का मिलन है, ये राधा कृष्ण का मिलन है। इसलिए रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु बड़े आनंद से चार चार बड़े ग्रुप बना के नाचते थे, और कहीं कहीं चैतन्य महाप्रभु रथ के पीछे रुक जाते थे, रथ नहीं चलता था, रथ रुक जाता था, और उस रथ के रुकने में, अभी उस रथ के रुकते समय चैतन्य महाप्रभु कभी कभी एक ऐसा गाना गाते थे जो सामान्य लोगों को लगता है गाना है, जैसे कोई प्रेमी, कोई प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए गाना गाए, ऐसे चैतन्य महाप्रभु कहते मैं भी वही आप भी वही, पहले भी हम मिलते थे आज भी हम मिल रहे हैं, लेकिन आज मिलने में वो आनंद नहीं है जो हम पहले मिलते थे। ये चैतन्य महाप्रभु जब ऐसा गाना गाते थे तो लोग समझते थे क्या कह रहे हैं। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु रहते थे जगन्नाथपुरी में, हमने आपको बताया जहां जगन्नाथ जी का मंदिर है नीलाचल में, वो द्वारका के समान ऐश्वर्य धाम है। और रथ यात्रा के समय जगन्नाथ जी जब चल के 2 किलोमीटर सामने गुंडीचा मंदिर में जाते हैं, उसको वृंदावन कहते हैं, सुंदराचल वो नीलाचल है, वो सुंदराचल है, सुंदराचल जो है उसको वृंदावन कहते हैं। वहां भगवान से कोई भी कहीं भी मिल सकता है, वो वृंदावन की तरह भगवान 7 दिन वहां रहते हैं। और यही कह के जाते हैं लक्ष्मी को मंदिर में कि मैं बलराम जी के साथ और सुभद्रा के साथ घूमने जा रहा हूं वृंदावन। तो जगन्नाथपुरी में नीलाचल क्या है, ऐश्वर्य धाम, सुंदराचल माधुर्य धाम वृंदावन है, और गंभीरा जहां चैतन्य महाप्रभु रहते थे वो औदार्य धाम है। तो ये तीनों धाम जगन्नाथपुरी में एक जगह पे है, औदार्य धाम। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जब रहते थे तो गंभीरा में रहते थे, और सिद्ध बाकुल एक वृक्ष है उसके नीचे, उस स्थान के ऊपर हरिदास ठाकुर रहते थे। वो मंदिर में दर्शन करने नहीं जाते थे क्योंकि उनका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था, मोहम्मदन परिवार में हुआ था, लेकिन वो रामाचार्य थे, फिर भी एक जो लोकाचार के व्यवहार से कभी भी मंदिर दर्शन करने नहीं गए। शिखर के ऊपर चक्र का दर्शन करते थे सुदर्शन का, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान जाके उनको दर्शन और प्रसाद रोज देते थे। और 2 बहुत बड़े महान चैतन्य महाप्रभु के शिष्य साक्षात सनातन और रूप गोस्वामी जब भी जगन्नाथपुरी, दोनों गए, दोनों भाई जगन्नाथपुरी गए हैं, और 2 बार गए हैं रूप गोस्वामी, लेकिन जब भी वो जाते थे हरिदास ठाकुर की कुटिया में रहते थे, वो भी दोनों भाई कभी जगन्नाथ मंदिर के अंदर दर्शन करने नहीं गए, जबकि वो सारस्वत ब्राह्मण थे, बहुत बड़े विद्वान पंडित थे, उनके लिखे हुए पुस्तक आज हम पढ़ते हैं, फिर भी वो कभी भी, क्योंकि उन्होंने केवल मुस्लिम शासक के पास मंत्री के पद के ऊपर काम किया था, वो अपने आप को नीच मानते थे और कभी भी मंदिर का दर्शन करने नहीं गए। तो रूप गोस्वामी उस वक्त में आए हुए थे और हरिदास के साथ रुके हुए थे, चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलने रोज गए। उस वक्त रूप गोस्वामी नहाने गया था समुन्द्र में, और कुटिया के अंदर एक कागज लिखा हुआ था, उसको देखा चैतन्य महाप्रभु ने, उठाया और पढ़ा, और पढ़ के आनंद में विभोर होके रामानंद राय से पूछा जो साथ गया था, रामानंद मेरे दिल की बात रूपा को कैसे पता लगा, वो मेरे मन की बात को कैसे जान गया, जो मैंने रथ यात्रा में कल गीत गाया था वो तो कोई नहीं समझता है, लेकिन ये कैसे लिखा है रूपन? तो रामानंद ने कहा ये आपकी कृपा होगी तभी उसने लिखा होगा, आपकी कृपा के बगैर आपके मन को कोई नहीं जान सकता। उसके अंदर क्या लिखा था? तब तक रूप गोस्वामी नहा के आए, चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये क्या लिखा है? बड़े संकोच कर रहे थे, नहीं बोला इसको पढ़ो। तब रूप गोस्वामी ने उसको पढ़ा और लिखा था राधा रानी कुरुक्षेत्र में खड़ी है, श्री कृष्ण अपनी सारी रानियों के साथ यदुवंशियों के साथ रथों में चढ़कर सूर्य ग्रहण पे कुरुक्षेत्र में आए हैं और सब बड़े बड़े महलों में तंबू बड़े बनाए हैं, पैलेस में रह रहे हैं, और यहां से वृंदावन से बैलगाड़ियों के ऊपर चढ़ के नंद बाबा गोप गोपियां राधा यशोदा आदि कुरुक्षेत्र गए हैं। कुरुक्षेत्र में राधा और कृष्ण फिर मिले हैं और तब राधा कृष्ण को देखते हुए रथ के ऊपर द्वारकाधीश बड़े वो वस्त्र पहने हुए राजा के तब कहती है आप भी वही हो मैं भी वही हूं। पहले हम वृंदावन में कदम वृक्ष के नीचे बंसी बट में जमुना के तट पे मिलते थे, उस मिलने में जो मधुर आनंद आता था आज फिर हम मिल रहे हैं, लेकिन इस कुरुक्षेत्र में आपके इस राज ऐश्वर्य में नहीं मिल रहा। ये चैतन्य महाप्रभु जाना गाते थे जगन्नाथ को देखकर कि आपका जो ये रूप है ये तो राजा का रूप है, और जब वृंदावन में आप जो ग्वाल रूप में होते श्री कृष्ण का स्वयं रूप क्या है? भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं गोप रूप, गोप वेश धारी, 16 साल का जो गोप वेश धारी कृष्ण है वो स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान गोप वेश धारी कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु तब कहते हैं रूप तुम्हें ये कैसे पता लगा मेरे मन की बात को? इसलिए हम रूप गोस्वामी के प्रणाम मंत्र में कहते हैं श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थपिताम ये न भूतले स्वयं रूप कदा मयम ददाति स्वपदांतिकम। कब कृपा करके रूप गोस्वामी हमारे ऊपर कृपा करेंगे जो चैतन्य महाप्रभु के मन को जाना और उसका पूरे विश्व में प्रचार किया। तो ये जगन्नाथ श्री कृष्ण राधा की जुदाई में सेपरेशन में ये रूप हुआ है। इसकी तो बहुत सारी कथाएं हैं कि ये रूप क्यों जगन्नाथ जी का हुआ, लेकिन ये भगवान अपने भक्त के गृह में इस महाभाव के ये महाभाव का रूप है, ये महाभाव का रूप है जिसमें श्री कृष्ण अपने भक्त और भक्तों में भी सबसे श्रेष्ठ उत्तम भक्त राधा रानी को मिलना चाहते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु राधा के भाव में नित्य जगन्नाथ का दर्शन करते थे और जगन्नाथ के रूप में चैतन्य महाप्रभु राधा के भाव में एक दूसरे का जब दर्शन करते थे ये राधा कृष्ण का मिलन है, ये भक्त का भगवान से मिलन है। तो चैतन्य महाप्रभु का जगन्नाथपुरी में रहने का रहस्य ये है कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में एक बार गए थे और इमली तनाव के नीचे बैठे थे। इमली तलाव अभी भी जाएंगे तो मंदिर है इमली तलाव, इमली का तो पेड़ है टर्मरिन ट्री है अभी भी वो पड़ी है उसको संभाल के रखा है। वहां जब बैठे थे तो चैतन्य महाप्रभु बैठे बैठे उनके भाव आया और उसका गोरा रंग सांवला होने लगा, मोर पंख प्रकट होने लगा बांसुरी, तो चैतन्य महाप्रभु एकदम उसको छोड़ दिया। पर इस भाव में कृष्ण के भाव में मैं राधा के आनंद का अनुभव नहीं कर सकता, इसलिए वृंदावन को छोड़ के वृंदावन में रहे नहीं और बहुत दूर आके रहते थे जहां अक्रूर घाट के ऊपर आके रहते थे, वृंदावन में नहीं रहते थे चैतन्य महाप्रभु। ये रूप चैतन्य महाप्रभु कृष्ण में परिवर्त होते उनको वृंदावन में ये ठीक नहीं लगा। और जब श्री कृष्ण द्वारका चले गए मथुरा चले गए तब से राधा रानी सेफ्रन कलर की साड़ी पहनती थी, इसलिए चैतन्य महाप्रभु पहले वैष्णव साधु हैं, जो सेफ्रान सन्यासी के कपड़े पहनते हैं। आज भी जितने वैष्णव व्रत महात्मा हैं, साधु सन्यासी हैं भारत में, सब सफेद पहनते हैं। और जितने बाबा जी हैं गौरिया वैष्णव, वो सब भी सफेद पहनते हैं। चेतना महाप्रभु पहले ऐसे अद्भुत वैष्णव सन्यासी हैं के रूप में लाल कपड़े पहने थे। और चेतना महाप्रभु के बाद इस पूरी लाइन में भक्ति सिद्धांत सरस्वती पहली बार लाल कपड़े पहन के अपने आप को सन्यास का वेश कहके, नहीं मैं परमहंस का कपड़ा नहीं पहन सकता हूँ, मैं सामान्य वर्ण आश्रम के अंदर रहना चाहता हूँ। तब से भक्ति सिद्धांत के बाद प्रभुपाद ने और हमारे पास सन्यासी लाल कपड़े पहनते हैं, लेकिन कोई भी गौरिया वैष्णव साधु लाल कपड़े नहीं पहनता है, सफेद पहनते। ये गौरिया गौरी या गौरी, गौरी तो राधा रानी है, असल में राधा का कृष्ण की जुदाई का वेश है। और ये जो सन्यासी को मंत्र होता है वो भी वही मंत्र दिए जाते हैं जो राधा कृष्ण के प्रेम के लिए गाती है। तो ये उनका भाव, ये राधा भाव है। और जगन्नाथ को देखने का मतलब है कृष्ण को देखना, जो अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि उनकी जुदाई में इस महाभाव के रूप में आ गए हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? बहुत अद्भुत लीला है जगन्नाथ जी की, और कभी इसको सुननी भी चाहिए, कभी जगन्नाथ जी का, जितना जगन्नाथ जी का सेवा करोगे कलयुग में जो लाभ मिलेगा, जो भक्ति मिलेगी, बहुत बहुत सरल पूजा है, बहुत आसान है। चेतना महाप्रभु जैसे पति तपावन है, ऐसे जगन्नाथ जी पति तपावन, और 10,000 साल तक कलयुग में इनका प्रभाव रहेगा, उसके बाद कलयुग का प्रभाव बढ़ जाएगा। और चेतना महाप्रभु का स्वर्ण युग भी कलयुग में 10,000 साल तक ही रहेगा, तो जगन्नाथ जी की कृपा भी 10,000 साल तक ही रहेगी। 5,000 साल तक गंगा पवित्र करती थी, अब गंगा पिकनिक की जगह बन गई। अब गंगा के किनारे साधु संत बहुत कम रहते हैं, सब होटलों वाले और ऐसे पिकनिक वाले रहने लगे हैं। अब गंगा का वो महत्व खत्म हो गया, इतना बड़ा डैम बनाया है, गंगा का पानी भी नहीं आता है। अब तो अभी हम गए थे चार धाम यात्रा में, नदियां सूखी हुई हैं, जगह जगह पे डैम बना के और बिजली बना रहे हैं। और बिजली बनाने का मतलब ये है कि गंगा के जल से जो ताकत होती है, शक्ति होती है, वो सब निकाल लेते हैं, और फिर वो पानी खेतों में जाता तो खेतों को बंजर बना देता है। तो ये तो अभी उनमें पति तपावनी 5,000 साल तक गंगा थी ऐसे लिखा है, और 10,000 साल तक अभी 4,500 साल तक जगन्नाथ जी दया करेंगे। तो जगन्नाथ जी एक बड़ा अद्भुत दयालु है। जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी, नयन पथ गामी भवा तुम्हें जगन। ये 8 श्लोक हैं, चेतना महाप्रभु स्वयं गाया करते थे जगन्नाथ के सामने। ये जगन्नाथ की जगन्नाथ अष्टकम है, ये अपने यहाँ जगन्नाथ अगर स्थापित है तो इस अष्टकम को अभी से लेकर जन्माष्टमी तक रोज गाने का अभ्यास करो, पर्चे छाप के, तो सबको याद हो जाएगा। रथारूढ़ो गचन पति भूदेव पतलई, बहुत सुंदर अष्टक है, और कृष्ण लीला और जगन्नाथ लीला दोनों का वर्णन है। और कुछ मंत्र है सिर्फ जगन्नाथ के उपासना का, बलराम जी की प्रार्थना का, सुभद्रा की और सुदर्शन चक्र की, एक एक दो दो मंत्र उनके हैं। यहाँ जगन्नाथ स्थापित है तो वो 3-4 चीजें छाप के रखनी चाहिए और वो अष्टक गाना चाहिए। बैठ के गाएंगे तो आप देखेंगे बहुत चमत्कार जगन्नाथ करेगा, ऐसा चमत्कार आप स्वयं अनुभव करेंगे, बड़ा अद्भुत इनका दर्शन है। तो ये 8 श्लोक जगन्नाथ अष्टकम के आपको कहीं मिल जाएंगे, हमारे वैष्णव बुकों में होगा लिखा, और महाप्रभु स्वयं ये गाते थे। तो इसको कहीं गाना हुआ मिलेगा तो उसके स्वर से गाना शुरू करो, छाप के कागज और अभ्यास करो और याद करो। और वो मंत्र भी देखता हूँ, मेरे पास में मंगाए थे, कहीं पड़े होंगे तो मैं उसका प्रिंट आउट बोलूंगा। तो उसको प्रार्थना सबको आनी चाहिए जगन्नाथ जी। कहाँ मैं जाता हूँ, बहरीन बलराम देश, बहरीनी मुस्लिम कंट्री है, वहां एक जगह जगन्नाथ जी की स्थापना है, रोज
रोज तो कुछ लोग हैं, लेकिन हर शुक्रवार की छुट्टी होती है वहाँ, तो सब लोग आते हैं, जगन्नाथ अष्टक सब पढ़ते हैं, सबको वो याद है, सब जितने आते हैं रोज सबको अष्टकम याद है और प्रार्थना के सारे मंत्र याद है। तो ये आप कर लें, देखें जगन्नाथ जी की, आप ऐसे भाव से पूजा करके देखें जगन्नाथ जी आपके आपके जीवन में बहुत बड़ा अद्भुत कवि परिवर्तन लाएंगे, अपने लिए बहुत सुंदर स्थान बना लेंगे, आप सबके लिए भी सब सुविधाएं, जैसे आप भगवान की भक्ति कर सको वो सारी व्यवस्था कर लेंगे। और ये जगन्नाथ जी के आते ही स्थान 100 सेंटरों में परिवर्तन हो गया, बड़े बड़े पूरे विश्व के अंदर स्थान विस्फोट हो गया, सिर्फ जगन्नाथ आए तो पूरी दुनिया का ऊपर स्थान छा गया। तो जगत के नाथ है वो, एक छोटे से आपके आइलैंड के अंदर कृष्ण भक्ति को चारों ओर फैला दें, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ भाव से आप इसका पूजा करो और भक्ति करो तो आपका जीवन निश्चित रूप से आपके द्वारा और लोगों का भी भला होगा। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? कोई क्वेश्चन?
Thank you.